संवर्धयन्ति यत्कामा संवर्धयन्ति यत्कामा स्वराज्य परिभावितः स्वराज्य परिभावितः दुर्लभानापि सिद्धानां दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः मुकुन्दं हृदि पश्यतः संवर्धयन्ति यत्कामा स्वराज्य परिभावितः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः संवर्धयन्ति यत्कामा स्वराज्य परिभावितः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः माताजी संवर्धयंती सुख को बढ़ाती है यत क्योंकि कामः ऐसी इच्छाएं स्वराज्य भगवान की सेवा करने के अपने वैधानिक पद पर स्थित परिभाविता ऐसी इच्छाओं से पूरित दुर्लभ दुर्लभ न नहीं अपि भी सिद्धानाम महान योगियों के मुकुंदम कृष्ण को हृदि हृदय में पश्चतः उनका दर्शन करने की आदि व्यक्ति अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण है वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते क्योंकि ऐसी उपलब्धियां ऐसे भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती। जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। तात्पर्य शुद्ध भक्त न केवल स्वर्ग लोक जाने में अपितु योग की सिद्धियों तक में अरुचि रखता है। असली सिद्धि तो भक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने से प्राप्त सुख तथा योग की आठ सिद्धियां अणिमा लघिमा प्राप्ति इत्यादि, इनके मिलने से मिलने वाले सुख भक्त को हर्षित नहीं करते। जैसा कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंश्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्र दिश्चकटायते यत कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव वस्तु महा। चैतन्य चंद्रामृत 5। जब भक्त को भगवान श्री चैतन्य की कृपा से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने का पद मिल जाता है तो वह निर्विशेष ब्रह्म को नरक मानता है और स्वर्ग लोक के भौतिक सुख को माया जाल मानता है। जहां तक दुर्दांत इंद्रियों की बात है, भक्त इन्हें दंतहीन विषैले सर्प के समान मानता है। योगी की विशेष चिंता इंद्रियों को वश में करने की रहती है, किंतु भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, उसे इंद्रियों को पृथक से वश में करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग भौतिकता में लिए लगे हैं उनके लिए इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भक्त की इंद्रियों भगवत सेवा में सदैव लगी रहती है, जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही वश में हो चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवद्गीता दूसरा अध्याय 59 श्लोक। भक्त की इंद्रियां भौतिक भोग के द्वारा आकृष्ट नहीं होती। यद्यपि यह जग दुखमय है, किंतु भक्त इस जगत को भी आध्यात्मिक मानता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगी रहती है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का अंतर सेवा का भाव है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। जब भगवान की सेवा करने का भाव नहीं होता तो मनुष्य के कार्यकलाप भौतिक होते हैं। प्रापंच के तया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.256। जो कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा है वह भौतिक है, और इस तरह जो कुछ लगा है उसका परित्याग नहीं होना चाहिए। एक गगन चुंबी प्रसाद तथा एक मंदिर के निर्माण के पीछे एक जैसा उत्साह हो सकता है, लेकिन प्रयास भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि एक प्रयास भौतिक होता है और दूसरा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्यों को भौतिक कार्यकलापों के भ्रम में आकर त्यागना नहीं चाहिए। हरि से संबंधित कोई भी वस्तु भौतिक नहीं होती। जो भक्त ऐसा मानता है वह आध्यात्मिक कार्यों को प्राप्त होता है, अतएव वह भौतिक कार्यों के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। परम दृष्ट्वा निवर्तते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण है वे महान योगियों की उपलब्धियों में कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां ऐसे भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती। जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। आज हम श्रीमद् भागवतम का 9वें स्कंद का 4वां अध्याय, इसका शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान, इस अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक देखा है कि महाराज अम्बरीश के प्रभाव से उनकी जितनी भी प्रजा है वो सारी प्रजा शुद्ध भक्ति कर रही है। ये एक महान शुद्ध भक्त का प्रभाव है। वो जहां जहां जाते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करने लगता है, कम से कम उस समय तक। इसलिए ऐसे भक्तों को कहा गया है कि ये लोग, इनको तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं ही तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान में हम लोग क्यों जाते हैं? ताकि हम भगवान के करीब आए, भगवान की सेवा करें, लेकिन ये जहां जहां जाते हैं वहां अपने हृदय में साक्षात वृंदावन धाम को लेके जाते हैं। असल में वृंदावन ये कोई भौतिक स्थल नहीं है, ये आध्यात्मिक है। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि वृंदावन एक भारत का हिस्सा है और कोई मथुरा नाम के जिले में एक छोटा सा गांव है, ये सही नहीं है। यह आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है और यहां पर हम लोग अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस का टिकट निकाल के पहुंच जाएंगे, ये भी गलत है। वहां पहुंचने का एक ही तरीका है और वो है भगवान के भक्तों की कृपा से हमारा हृदय जब निर्मल हो जाता है, सारे विषय जब छूट जाते हैं, तब हम सही वृंदावन को देख सकते हैं। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं महाराज अम्बरीश के जैसे, यहां विषयों के प्रति उनका कोई आकर्षण ही नहीं है, और जैसे उनका आकर्षण नहीं है उनकी प्रजा का भी कोई आकर्षण नहीं। यहां लिखा गया है कि उनको स्वर्ग के बारे में भी कोई ऐसे नहीं लग रहा मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए, मुझे कुछ यज्ञ करना चाहिए। सब लोग इतने आनंद में हैं कि उनके लिए यहीं पर रहना, इसी प्रकार से सेवा अनंत काल तक करते रहना, उनको वैकुंठ में भी नहीं जाना है, बस महाराज अम्बरीश के साथ रहना, उनकी सेवा में हमारा साथ देना। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षास्त्र के द्वारा हमें भक्ति के अलग अलग अंग दिखाते हैं। और एक श्लोक कहते हैं जो कि हम लोग हर दिन सवेरे गाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जो भौतिक परिस्थिति है उसका एक प्रभाव ऐसा रहता है कि हम लोग जो चीज गा रहे हैं उसके बारे में भी ज्यादा सोचते नहीं, गहराई से सोचना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी, तो ऐसे कैसे भक्त गा सकता है जबकि संसार में हर व्यक्ति इन्हीं चीजों को चाहता है। धनम, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक केवल धन के बारे में बात करता है। आप देखेंगे, आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, किसी क्लब में जाइए, सुबह से मतलब जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त करते हैं उस समय भी लोग केवल यही बात करते रहते हैं कि किस प्रकार से अधिक पैसा कमाया जाए। क्यों कमाना जाए पता भी नहीं उनको, बस कमा दे रहो। जन्म, जैसे धन आता है तो व्यक्ति सोचता है अभी मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स होना चाहिए, तो कोई पॉलिटिक्स में जाता है, तो कोई और किसी चीज में जाता है, किसी भी प्रकार से लोग मेरी प्रशंसा करें, अहंकार को और उत्तेजित करें। न धनम न जन्म न सुंदरिम, अपोजिट सेक्स, उसके प्रति आकर्षण। ये सारा संसार उसके प्रति आकर्षण, और कभी कभी इस भोगवादी वृत्ति से तंग आकर एक त्यागवादी वृत्ति कि नहीं अभी सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, इस मोक्ष से भी मोक्ष चाहिए, किसको? भक्त को। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मैं बार बार यहां पर आना चाहता हूं, मुझे मोक्ष से भी कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे भक्त कैसे गा सकता है? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, ये बहुत सुंदर प्रपोर्ट है, तात्पर्य है, जिसमें अनेकों मुद्दे दिए हैं प्रभुपाद ने कि हम प्रयास करेंगे अलग अलग चीजों को देखने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद ने यहां बताई है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि एक अलग प्रकार का आनंद प्राप्त होने के कारण ये छोटे मोटे आनंद जिसके लिए पीछे संसार पागल है उस आनंद को भक्त देखता तक नहीं। जबकि इंद्रिया बहुत शक्तिशाली है, हमारी इंद्रिया इंद्रिय भोग के पीछे हमें खींचते रहती है और खींचने के कारण हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब कुछ इसके पीछे जाता है। हमारा सारा अस्तित्व केवल इंद्रिय भोग के प्रति रहता है। तो ये बातें कैसे बदल जाती हैं? और ये कोई आसान बात नहीं है कि इंद्रियों को हम वश कर लिए, भगवान की भक्ति कर लिए। श्री रामचंद्र भगवान जब अलग अलग आश्रमों से घूमकर वापस अयोध्या आ रहे हैं, तभी एक जगह विश्वामित्र मुनि वो स्वयं कहते ये जगह पे मेरा उद्धार हुआ है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं उनकी स्वयं की कथा। राजा विश्वामित्र पृथ्वी के सम्राट है और घूमते घूमते अपने सैनिकों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आ जाते हैं और वशिष्ठ मुनि उनका स्वागत करते हैं, उनको पूछते हैं कैसे चल रहा है महाराज। महाराज भी उनको पूछा आपका सब साधना वगैरह कैसे चल रहे हैं। उसके बाद वशिष्ठ मुनि कहते हैं क्या मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को मैं कुछ भोजन खिलाऊं। तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि अभी ये क्या खिलाएंगे, शायद कुछ फल या कोई रूट्स, कंदमूल, इसी प्रकार कहना पड़ेगा। लेकिन वो कहते अभी एक आध घंटा रुक जाइए। रुकने के बाद अचानक देखते हैं तो हर व्यक्ति के पास गोल्डन प्लेट, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के भोग पकवान, ऐसा स्वादिष्ट भोजन जैसे विश्वामित्र मुनि ने कभी खाया ना हो। तो सोच रहे इतने से एक जंगल के आश्रम में इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की, वो भी एक घंटे के अंदर। तो वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तो वशिष्ठ ने अपनी गाय की तरफ हाथ दिखाया, बोले ये कामधेनु है, मैं जो चाहता हूं वो सब कुछ करती है। अभी विश्वामित्र को वहीं पर प्रसन्न होकर चला जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या सोचा, मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है कि ये कामधेनु मेरे पास हो। इस छोटे से ब्राह्मण को क्या है। तो विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ जी ये गाय मुझे चाहिए, मुझे आप ये दान दे दीजिए। तो वशिष्ठ कहने लगे मैं यज्ञ कैसे करूंगा, मेरा सारा जीवन जो है यज्ञ के ऊपर है और यज्ञ करने के लिए जो दूध, दही, घी, जो कुछ भी लगता है वो गाय से आता है, इसलिए मैं आपको इस काम देने को नहीं दे सकता। विश्वामित्र मुनि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को बताया चलो इसको खींच के लेके जाओ। तो गाय को खींचने लगे और गाय बहुत करुण आंखों से वशिष्ठ के पास देख रही है कि देखो ये राजा मुझे लेके जा रहा है, आप कुछ करो, मैं आपके आश्रम में रह रही हूं। तो वशिष्ठ ने कहा ये तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, मैं क्या कर सकता, मैं छोटा सा ब्राह्मण हूं, युद्ध करना मुझे नहीं आता है, आप ही अपनी रक्षा करो। कामधेनु उसके हर रंध्र से इतने सैनिक निकले कि कुछ ही क्षण में विश्वामित्र के सारे सैनिक खत्म हो गए। विश्वामित्र के पास कुछ नहीं बचा, बहुत लज्जित होकर चला गया। विश्वामित्र ने घर पे जाके बताया ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसके 100 पुत्र और सेना सब लोग वापस आए और सारे 100 के 100 पुत्र वशिष्ठ के ऊपर बिल्कुल हल्ला करने लगे, मारने के लिए आए हैं। और वशिष्ठ ने क्या किया, केवल एक हुंकार, सब लोग वहीं के वही राख बन गए। सोचने क्या है ये, फिर इतने सारे सैनिक आए, उनके सामने वशिष्ठ ने केवल अपना डंडा लिया और डंडा ऐसे रखा और डंडे से अस्त्र निकलते गए और सारे सैनिक परास्त हो गए। तब विश्वामित्र सोचने लगा, अरे ये ब्रह्म तेज, ये ब्राह्मण की शक्ति क्षत्रिय की शक्ति के खिलाफ मतलब इतनी शक्तिशाली है कि क्षत्रिय कुछ नहीं है। आज से मैं निर्णय लूंगा कि मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। अभी विश्वामित्र मुनि तभी के लोग ऐसे ही थे, वो तुरंत जंगल में चले गए तपश्चर्या करने के लिए। उन्होंने सुना योग कैसे करते हैं और तपश्चर्या कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है, मन में क्या इच्छा है, मैं को जिस संसार में मुझे शक्ति चाहिए, कैसी शक्ति, ब्राह्मण की शक्ति, ब्रह्म शक्ति चाहिए। इसीलिए जब वो तपश्चर्या घोर तपश्चर्या करने लगे, 60,000 साल तपश्चर्या करने के बाद, नहीं पहले 12,000 साल के, तभी लोग बहुत जीते थे, 1,00,000 साल की उम्र होती थी उनकी। तो अपने इंद्र जी बैठे हैं, उनको बहुत तकलीफ होती, कभी भी ऐसे कोई तपश्चर्या करने लगा तुरंत डर जाते हैं। हाँ, ये भौतिक संसार का नियम है कि जैसे ही लोग आसपास देखेंगे कि अरे ये व्यक्ति मेरा बाजू का नेबर, इसके कुछ पास कुछ ज्यादा आ गया तो डरने लगता है। वो कोई कंपनी में काम कर रहा है, उसे जो ये थोड़ा ज्यादा स्मार्ट आदमी आ गया तो डरने लगता है, क्योंकि उनको पद की असुरक्षितता होती है। ये असुरक्षित भाव जो है, ये भौतिक संसार का स्थायी भाव है। हर स्थिति में हमें असुरक्षित रहता है। जिसके पास करोड़ों अब्जों रुपये हैं वो भी असुरक्षित महसूस करता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी असुरक्षित महसूस करता है। कैसा नियम है। तो इंद्र ने मेनका को भेज दिया, और इतनी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को विषयों से बिल्कुल अलग रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी केवल मेनका के नुपुर की झंकार काफी थी उनके लिए। छुन छुन सुने, पतन हो गया। फिर सोचे, नहीं ऐसे में नहीं होने दूंगा, फिर से तपश्चर्या करूंगा। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय की जय। तो तपश्चर्या में लग गए, फिर कुछ समय गिर गया, और फिर इंद्र ने और किसी को भेजा। इस समय उन्होंने फिर से आ गए, तो इस समय उन्होंने काम वासना को अपनी रोक लिया, लेकिन क्रोध आ गया, क्रोध से उसको जला दिया। सब लोग डर गए, फिर से सारे कहां मैं फंस गए, क्रोध कहां से आ गया। यह हमारी स्थिति है। अगर हम इंद्रियों को काबू करना चाहते हैं किसी भौतिक वस्तु को हासिल करने के लिए, चाहे वो सिद्धि क्यों ना हो, ये बहुत ही कठिन बात है। जब तक वे नम्र नहीं बने, यहां तक उनकी उन्नति इतनी हो गई, और एक ऐसा समय आ गया जब उन्होंने, ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, आज से आप ब्रह्मर्षि बन गए। तो आज तक सब लोग ब्रह्मा जी बार बार आके बोलते, तुम अभी ऋषि बन गए, तुम महर्षि बन गए, लेकिन उनको ब्रह्मर्षि बनना था। तो ब्रह्मा जी स्वयं आके बोले कि आप अभी ब्रह्मर्षि बन गए हो। तभी नम्रता से उन्होंने क्या कहा, नहीं ये बात है ना, मैं आपसे नहीं सुनना चाहता, मैं वशिष्ठ से सुनना चाहता हूं कि मैं ब्रह्मर्षि बन गया। देखो, जिसके लिए उसने प्रयास किया था, लेकिन कितने साल लगे, कितनी कठिनाई आई। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ स्वयं आए, उन्होंने उसको आलिंगन दिया, बोला यस आप अभी ब्रह्मर्षि बन गए हो। क्यों, क्योंकि हृदय से जो वासना है वही निकल गई है। जिसके लिए वो करना चाहते थे उसकी कोई इच्छा नहीं रही उनको, और इसीलिए आगे जाकर स्वयं भगवान रामचंद्र उनके शिष्य बने। कहने का मतलब यह है कि हम जब तक भगवान की जो भगवान का जो प्रेम है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। प्रभुपाद कहते कि तब तक किसी भी योग पद्धति से हमारे इंद्रियों के ऊपर काबू करना अत्यंत दुर्दम्य है, हो ही नहीं सकता। एक तरफ हम विश्वामित्र के बारे में सुनते हैं, दूसरी तरफ नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर उनके पास कौन सी सिद्धि थी? नाम सिद्धि, दिन रात केवल भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई चमत्कार नहीं। ऐसे नहीं क्योंकि बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर का इतना भगवान के नाम के प्रति प्रेम था कि वो जहां जाते हैं लोग उनके पास आकर्षित हो जाते हैं। और जो तथाकथित ब्राह्मण, वो लोग सोच रहे थे अरे हम तो इतने बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, हम एक कुल से है वो कुल से है, फिर भी ये हरिदास जो बात है जो कि एक म्लेच्छ परिवार से है, सब लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने मुसलमान राजा को जाके बताया कि भाई ये तो आपके धर्म का है, ये इसका भगवान का हिंदू भगवान का नाम क्यों लेता है, कुछ करो। मुसलमान लोगों ने जाके बताया कि मुसलमान होके भी हिंदू भगवान का नाम, इसके लिए कुछ करो। तो दोनों तरफ से जब इस प्रकार का प्रेशर आ गया तो राजा ने क्या कहा, ठीक है हम इसको जेल में डाल देंगे। तो जेल में डाल दिया तो अभी उनका आकर्षण जेल में इतना है, जेल वाले तो सब खुश थे, और यहां तक कि बाहर के लोग अलग अलग छोटी मोटी चोरियां करने लगे। अचानक चोरी का प्रभाव बढ़ गया, इतना कैसे माहौल खराब हो गया कि सब लोग आजकल चोरी करते हैं करते हैं। कारण यह था कि सब लोग चाहते थे हम जेल में जाएं, क्यों? क्योंकि वहां पर हरिदास ठाकुर है। जेल भर गई हरिदास ठाकुर के कारण। तो राजा ने सोचा ये तो अलग दूसरा प्रॉब्लम है तो उनको हरिदास ठाकुर को रिहा किया गया। इस समय दूसरी एक छोटी बात याद आ रही है, वो बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भक्त लोग हर दिन रास्ते पे संकीर्तन किया करते थे, बहुत आनंद से नृत्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेडीज गोपी डॉट, गोपी के वस्त्र साड़ियां कलरफुल, और हमारे गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी लोग बिल्कुल कलर, चेहरा एकदम तेजस्वी, ऐसे कीर्तन कलरफुल कीर्तन, बहुत आनंद से नाचते नाचते जाते थे। फिर से वही गड़बड़, सब लोग सोचा ये सब बहुत आकर्षित दिख रहे हैं, सब लोग उनके पीछे जा रहे हैं। गवर्नमेंट में उन्होंने दर्ज कर दिया कि इनको जेल में डाला जाए, डाल दिया जेल में। बोले ये सब नहीं कर सकते तुम, किसका परमिशन लिया है, आप जेल में रहो। तो जेल में रहने के बाद टेंपल प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद को खत लिखा कि अभी इनको अगर जेल से निकालना है तो बहुत अच्छा लॉयर चाहिए, और इस लॉयर की फीस है $10,000। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं आई एम ए कलकत्ता बॉय। हाँ, प्रभुपाद वॉज लाइक दैट, उनका एक गणित अलग था। तो प्रभुपाद ने खत लिखा, ये $10,000 के वकील की कोई आवश्यकता नहीं, आप जेल में ही जम के कीर्तन करो। हाँ, तो जेल में हर दिन कीर्तन शुरू हो गया, बहुत आनंद से नाचने लगे सारे जो जेल के जो बाकी भयंकर खूंखार इस प्रकार के व्यक्ति, ये सब लोग कीर्तन करने लगे। और अचानक ये जेलर देख रहा है कि जेल में सब आनंद का वातावरण चल रहा है, जेल इसके लिए नहीं होती ना कि सब लोग आनंद में रहे। जेल में तकलीफ होनी चाहिए, यहां देख रहा है सब लोग आनंद में है। यहां तक एक दिन वो प्रमुख जेलर जब आ गया, वो जेल के जो हवालदार थे तो जेलर जैसे आया तो बोला हरि बोल। बोला ये तो क्या गड़बड़ होगी, सब लोग इस प्रकार से। तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर निकवाया कि ये अंदर ज्यादा डेंजरस है, बाहर तो ठीक थे अंदर ज्यादा डेंजरस हो गए, इनको छोड़ दिया जाए। तुरंत ही एक महीने के अंदर उनको बिना केस चलाए ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये उपकथानक था। तो हरिदास ठाकुर, ऐसे हरिदास ठाकुर का जब प्रभाव इस प्रकार का था तो वहां पर एक रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति था, जमींदार, बहुत पैसे। वो सोच रहा है, पंडित, ये भी ब्राह्मण परिवार से था, वो सोच रहा है मेरा प्रभाव इतना होते हुए हरिदास ठाकुर का प्रभाव कैसे चल सकता है। तो उसने बहुत प्रयास किया अलग अलग प्रकार से, लेकिन आखिर उसने सोचा कि जहां पर कुछ नहीं चलता है वहां पर नारी का काम होता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर ऐसे एक वेश्या को बुलाया, कहा कि जाओ हरिदास ठाकुर को उत्तेजित करो, और जब आप हरिदास ठाकुर के साथ रहेंगे तब मैं उसको पकड़ के सारे समाज के सामने उसका सही चित्र दिखा दूंगा। आत्मवत मन्यते जगत, जैसा व्यक्ति होता है वैसे दूसरों के बारे में सोचता है। रामचंद्र खान की वृत्ति यही थी, इसलिए वो सोच रहा है कि हरिदास ठाकुर भी ऐसे ही है। और इस वेश्या ने भी कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे तो कितने लोगों को मैंने फंसाया है, ये तो छोटा काम है। और शाम के समय संध्या हो गई, हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं, तभी वहां पर मंडराने लगी, घूमने लगी, और रास्ते से आकर उनकी झोपड़ी में बैठ गई दरवाजे में। और हरिदास ठाकुर ने पूछा कि क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत जवान हो, सुंदर हो, मैं भी जवान हूं सुंदर हूं, जंगल है, अकेलापन है, सब कुछ बराबर है, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिल जाएं। हरिदास ठाकुर ने कहा तुम्हारी जो इच्छा होगी उसको मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन आज मेरा एक व्रत है कि मैं हर दिन 300,000 बार भगवान का नाम लेता हूं, वो भी पूरा नहीं हुआ है, तो आप बैठो यहां पर, जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं आपके साथ आ जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये कोई साधारण जप नहीं हो रहा है, हरिदास ठाकुर नामाचार्य ये जप कर रहे हैं। तो जब भगवान के शुद्ध भक्त ये जब करते हैं तो क्या होता है, भगवान वहीं पर मौजूद होते हैं। असल में हम लोग जब करते तभी भी भगवान होते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं और मेरा नाम अभिन्न है, तो हम लोग जब करते हैं तभी भी वो रहते हैं, लेकिन हमने क्या किया है उनको थोड़ा दूर रखा है। क्यों, बीच में छोटी मोटी चीजें लाई है, भगवान और हमारे बीच में ये छोटी मोटी चीजें लाई। एक्चुअली इनका कोई, जैसे हमारा, हम लोग मृत्यु शैया पे पड़े हैं तो कोई सोचेगा मेरा धन का क्या होगा, सोचेंगे, लोग सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। इस संसार का सारा धन, ये संसार की सारी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू एक जीरो के बराबर है जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं, कोई फायदा नहीं। लेकिन वो छोटी सी चीज हमारे और भगवान के बीच में पड़ी रहती है, हमारे विषय, विषय भोग की लालसा, यही हमारे बीच में है। प्रभुपाद के शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, इनको प्रभुपाद ने कहा कि आप जगन्नाथ की मूर्ति बनाइए, तो जगन्नाथ की मूर्ति बनाने लगे। लेकिन उस समय जगन्नाथ की मूर्ति बनाते समय भी वो कभी कभी सिगरेट पीते थे, प्रभुपाद को पता नहीं था। प्रभुपाद एक दिन देखने को गए, कहां तक आई मूर्ति, कहां तक बनी है, तो देखा तो सिगरेट का पैकेट है। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, प्रभुपाद ने सिर्फ इतना ही कहा कि क्यों आप इस छोटी सी वस्तु को आपके और भगवान के बीच में ला रहे हो, बस इतने वाक्य से उसने छोड़ दिया। तो हरिदास ठाकुर जब जप करते हैं तो उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, इसके कारण स्वयं भगवान वहां पर मौजूद है और वो वेश्या भी सुन रही है। आस्ते आस्ते सवेरा हो गया, सारे चारों ओर देखने लगा, उजाला आ गया। तो लेडी ने कहा कि भाई आपने तो कुछ मुझे कुछ आनंद दिया नहीं। तो हरिदास ठाकुर बिल्कुल जेन्युइनली बोले कि मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरा आज जब हुआ ही नहीं, आप आज शाम को फिर से आइए। फिर रामचंद्र खान के पास जाकर उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ नहीं, लेकिन कल जरूर होगा, आप अपने गार्ड्स को वहां पर रखिए छुपे हुए। दूसरे दिन फिर से गई, फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि अभी कुछ जब बाकी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सवेरा हो गया, आस्ते आस्ते वो वेश्या स्वयं भगवान का नाम लेने लगी। तीसरा दिन आया और तीसरे दिन के अंत अंत में वो वेश्या का हृदय इतना निर्मल हो गया भगवान का नाम लेने से। चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादावा, जब भगवान का नाम लेते तो चित्त का दर्पण बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। वो सोचने लगे क्या मेरे जीवन का अर्थ है, ये मैं क्या करने जा रही थी। बहुत पश्चाताप से हरिदास ठाकुर के शरण में गई। उन्होंने कहा कि रामचंद्र खान ने मुझे यहां भेजा था आपको पतित करने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूं, मैं यही व्यवसाय करती हूं। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं पहले से ही जानता था कि रामचंद्र खान आपको भेजने वाले हैं, लेकिन केवल आपके उद्धार के लिए मैं यहां बैठा हूं तीन दिन तक, आज के बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपका जो भी अतीत है, जो भी पिछला कार्य है, जो इतिहास है, उसको आप अभी त्याग दीजिए, घर पे जाके सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दे दीजिए और यहां पर आकर तुलसी महारेणी के सामने आप जप करते रहिए। और उनके आज्ञा से वो वेश्या उस दिन से एक महान भक्त बन गई। दूसरे एक बार हरिदास ठाकुर के सामने स्वयं माया देवी स्वयं आई, और माया देवी ने जब देखा हरिदास ठाकुर का व्रत तो उन्होंने भी उनसे शिक्षा ग्रहण की। ऐसे कैसे संभव है, यहां पर कठोर तपस्वी विश्वामित्र एवं केवल नुपुर के झंकार से उनका पतन होता है, और यहां पर हरिदास ठाकुर के सामने अंग प्रदर्शन करने के बाद भी हरिदास ठाकुर विचलित नहीं होते हैं। कारण क्या है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। यह हरिनाम भगवत प्रेम, हरिनाम क्या है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक का जो प्रेम धन है, गोलोक में जो प्रेम चलता है भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में, यही प्रेम आज हमारे पास कैसे अस्तित्व में है, हरिनाम के रूप में। हरिनाम गोलोकेर प्रेम धन है। तो जिसको इस प्रकार की अगर कोई वस्तु मिली है, जैसे सनातन गोस्वामी की एक कहानी हम लोग सुनते हैं कि एक व्यक्ति जो भगवान को इतना नहीं जानता था, लेकिन वो बहुत चाहता था कि मुझे एक संपत्ति मिले, शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी ने कहा ठीक है जाओ, आप सनातन गोस्वामी वृंदावन में हैं, उनके पास जाइए, वो आपको एक पारस मणि देंगे, पारस मणि से जिसको स्पर्श करेंगे वो सोना बन जाएगा। तो तुरंत भागे दौड़े वहां पर आ गए और सनातन गोस्वामी को पूछने लगे कि मुझे ऐसे कहा गया कि आपके पास पारस मणि है। बोला हाँ है। तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कहां रखा है? वो छोटा सा कॉर्नर में कचरे का जो ढेर दिख रहा है उसमें कहीं होगा, ढूंढ लीजिए। तो उसने ढूंढा तो एक अलग प्रकार का स्टोन उनको मिला। तो बोले ये पारस्परणी है, बिल्कुल पारस्परणी है। तो भागा भागा बाहर चला गया और अलग अलग चीजों को छू करके देखने लगा, तुरंत सोना बन गया। वाह, मैं आज से अमीर हो गया, खुश हो गया। वो घर पे चला गया, बहुत सोना। फिर जब रात को सो रहा है तो सोच रहा है, ठीक है पारसमणि तो मिल गया, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता सनातन गोस्वामी इसको कचरे के ढेर में क्यों रखे थे। हाँ, सोच रहा है वो, अरे ऐसी कोई वस्तु अगर पारसमणि आपके पास छोटा सा भी एक तोला सोना होगा तो भी आप कहां रखते हैं? हाँ, कपाट के अंदर, कपाट के अंदर नहीं, कपाट के अंदर और एक कपाट, उसके अंदर और एक कपाट, और फिर अंदर जाके रख देते हैं, है कि नहीं? वो कागज का शेर होता है उसको भी अंदर रख देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो पारसमणि को अगर वो कचरे के ढेर में रखते, कुछ तो गड़े, इससे कुछ और अधिक होगा उनके पास। भागा भागा फिर से आता है, फिर पूछता है कि ये पारसमणि आपने कचरे के ढेर में क्यों रखा था? क्या आपके पास ऐसी कोई वस्तु है जो इससे भी अधिक शक्तिशाली, अधिक मौल्यवान है? तो सनातन गोस्वामी ने कहा बिल्कुल है। क्या आप मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे, तो दीजिए। तो नहीं, कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन है? ये पत्थर को जाके यमुना में फेंक दो, फिर वापस आ जाओ। पारसमणि को पहले यमुना में फेंक दो। तो गया, बहुत हृदय को ऐसे पकड़ के फेंक दिया उसने। कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन फेंक दिया विश्वास के साथ। फिर जब वापस आया तभी सनातन गोस्वामी ने उसको हरिनाम का धन दे दिया। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम ऐसा धन है जो कि जिसकी कोई योग्यता नहीं है। हम जैसे लोग, ये लोग भी जैसे हरिनाम के माध्यम से भगवान से जुड़ जाते हैं, उनका चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। असल में महाराज प्रताप रुद्र जैसा व्यक्ति जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारा धन, सुंदर परिवार, जितने चाहिए उतने उनकी शक्ति, हाथी घोड़े, जमीन, अलग अलग प्रकार के महल, सुंदर भोजन, कुछ किसी की कमी, जो जो आप सोच सकते हो सब कुछ उनके पास है। लेकिन उन्होंने जब देखा अपने पैलेस के रूप पे जाकर, वो नीचे देख रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य उनको दिखा रहे हैं, और सारे बंगाल के भक्त अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथपुरी आ गए, और कीर्तन करते करते ऐसे मस्ती में जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि कौन लोग है, ऐसा कीर्तन आज तक मैंने देखा नहीं, ऐसी आवाजें कभी सुनी नहीं, ऐसा आनंद कभी देखा नहीं, ये क्या कर रहे हैं? भट्टाचार्य उनको कहते इसको प्रेम संकीर्तन कहते हैं। ये क्या है? प्रेम संकीर्तन। ये साधारण संकीर्तन नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की ये देन है कि प्रेम संकीर्तन से जो आनंद आता है इसकी इस विश्व में किसी चीज से तुलना नहीं हो सकती। फिर उन्होंने दिखा ये अद्वैताचार्य है, ये नित्यानंद प्रभु है, एक दादर पंडित, अलग अलग लोगों के बारे में, और जिसको जिसको देखते थे वो चेहरा उनका ऐसा तेजस्वी, ऐसा आनंद कि महाराज प्रताप ने बोला कि मैंने ऐसे कभी आज तक देखा नहीं, मैं भी ये चाहता हूं। भट्टाचार्य से उन्होंने विनती की कि आप जाके चैतन्य महाप्रभु के साथ मुझे एक बार मिलवा लीजिए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप नहीं मिल सकते, राजा के साथ सन्यासी का मिलना बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए राजा से अगर मिलवाना चाहते हो तो मैं यहां से चला जाऊंगा। भट्टाचार्य ने जाके उनको कहा कि राजा नहीं मिल सकते आपको। तब उन्होंने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर राजा नहीं, राजा होने के कारण मैं नहीं मिल सकता तो मैं इस राजपद को ही त्याग देता हूं। और देखो कि उसको ये तैयारी होनी चाहिए भक्त की। भगवान क्या देखना चाहते हैं, कितनी हमारी तैयारी, भगवान तो हमेशा उपलब्ध है, हरिनाम में, हरि सेवा में, वैष्णव सेवा में उपलब्ध है। लेकिन हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए? महाराज प्रताप रुद्र के जैसे, वो कहते हैं कि मैं एक कान फाड़ता, कान फाड़ाने पूरे के लोग कान को फाड़कर उसमें एक हस्तिदंत की बाली डालते थे, इनको कान फाटे भिखारी कहते थे, अभी साधु कहते थे। मैं वो बनना चाहूंगा अगर उसके कारण मुझे चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। ये परम दृष्टवा निवर्तते। यहां तक कि भगवान की ये जो सेवा है, भगवान का जो नाम है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, उसका आकर्षण इतना जबरदस्त है कि स्वयं भगवान कभी कभी सोचते हैं कि ये क्या आकर्षण है, मैं देखना चाहता हूं इसको, किस प्रकार का आकर्षण है, कौन सा ऐसा प्रेम है। जब राधा रानी मेरे बारे में सोचती है तो क्यों पागल हो जाती है? जब मेरे शरीर को छूकर जो हवा गोपियों को लगती है तो क्यों मूर्छित होते हैं? ऐसा क्या है मुझ में, मैं देखना चाहता हूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर, ये देखने के लिए कौन सा एक क्या परम दृष्टवा निवर्तते हैं। तो हमारा यह अहोभाग्य है कि हम ऐसे जो भगवान स्वयं जिस चीज को चाहते हैं उसी भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी हम विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं। संसार में अलग अलग प्रकार के दुखी प्राणी होते हैं, लेकिन सबसे अगर दुखी कोई व्यक्ति है तो वो भक्त है जिसने ये समझ लिया है कि भौतिक संसार बराबर नहीं है। भक्ति में लग गया लेकिन अभी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, बीच में है। वो बीच में होने के कारण उस भौतिक संसार का भी लोभ भोग नहीं कर सकता, उसको उसमें आनंद नहीं आता है, उसमें रुचि नहीं आती है। लेकिन अभी तक वो परम रुचि भगवान की वो नहीं मिली है, तो उसके कारण बीच में होने का कारण बहुत ही तकलीफ में होता है, ना घर का ना घाट का। ये बहुत दुखी अवस्था होती है उसकी। इस दुखी अवस्था का कोई इलाज है? बिल्कुल है। ये दुखी अवस्था तब आती है जब हम ये लड़ाई अकेले लड़ते हैं। माया के साथ लड़ाई कोई आसान बात नहीं है। कभी हम लोग सोचते हैं माया बहुत स्ट्रांग है प्रभु, लेकिन ये बहुत निम्न स्तर का माया का प्रभाव हम बता रहे हैं। माया बहुत स्ट्रांग है, माया इतनी स्ट्रांग है वो कृष्ण के अलावा और उनसे ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं है, ये माया का प्रभाव है। तो हम छोटे से जीव वो क्या माया के साथ लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं लड़ सकते। इसलिए हमें साथ में होना चाहिए, खास करके हमारे गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। ये हरिनाम वही है, लेकिन ये हरिनाम अगर उस परंपरा से आता है, उस संप्रदाय से आता है, तो उसकी शक्ति कई गुना अधिक होती है। हमारे बीच में अगर एक भी व्यक्ति है जो शुद्ध है तो उसके कारण उसकी शुद्धता का प्रभाव जो है बाकी सारे लोगों के ऊपर पड़ता है, और हमारे बीच में कई शुद्ध लोग हैं। इसलिए हमारी ताकत हो या ना हो, हमें उनके साथ रहना चाहिए जिनकी ताकत है। ऐसे कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग 100-100 के नोट बैंक में देते हैं, उसमें हमारा भी एक फटा नोट भी चला गया लेकिन चला जाता है वो। तो भगवान के पास हम आक्रोश करके बोल रहे हैं भगवान को हमें ले लो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन हम कोरस में गाएंगे सब लोग के साथ, तो भगवान सबके साथ प्रसन्न है, तो आपका भी बीच में नंबर लग जाता है। तो इसलिए भक्तों को भगवान के जो इस प्रेम को प्राप्त करना है तो उसका तरीका क्या है? हरिनाम और वैष्णव सेवा, यही हमारा योग धर्म है। कितना सिंपल है, हरिनाम करो, वैष्णव की सेवा करो, और क्या चाहिए आपको? अरे इसी से ये सब कुछ संकीर्तन है, जब हम भगवान के भक्तों के साथ आकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सब कुछ प्रेम संकीर्तन है, आनंद का संकीर्तन। तो हमारा भाग्य यह है कि हम इसके बीचों बीच है, और हमारा दुर्भाग्य तब होगा जब हम ये सोचेंगे कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं अभी इतना महान बन चुका हूं कि हरिदास ठाकुर की तरह मैं अकेले झोपड़ी में रहूंगा, हमारी शक्ति नहीं। हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर है, रामानंद राय रामानंद राय है, हाँ कृष्णदास कविराज कवि गोस्वामी कहते कि इनकी नकल मत करो, बहुत बुरी तरह से पिटी जाओगे, हाँ इनकी नकल नहीं कर सकते। और यही चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रेम संदेश है, प्रेम संकीर्तन, परम दृष्ट्वा निवर्तते, श्रील प्रभुपाद हमारे पास लेके आए हैं। प्रभुपाद ने जिसको जिसको ये धन दिया, प्रभुपाद के एक शिष्य बैठे थे उनके सामने ही, और जब बैठे थे तो सामने से एक छोटी सी चींटी जा रही थी, तो उस शिष्य ने क्या किया, उस चींटी को बहुत प्रेम से ऐसे बाजू में किया ताकि किसी का पैर उसके ऊपर पड़कर मरने जाए, तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्नता से स्मित हास्य करके बोलने लगे कि पहले आप इसको मार देते थे, लेकिन आज भगवान का प्रेम आपके हृदय में उदित होने के कारण आप हर जीव से प्रेम कर रहे हो, आप उस जीव को भी प्रयास कर रहे हो किस प्रकार से प्रोटेक्ट हो जाए। प्रभुपाद ने बहुत म्लेच्छ लोगों को, हमारे जैसे लोगों को ये प्रेम संकीर्तन देके बहुत आनंदी बना दिया। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि आपका चमत्कार क्या है बताइए स्वामी जी, सब लोग स्वामी जो आते हैं भारत से कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं, आपने क्या चमत्कार किया? तो प्रभुपाद ने कहा ये पहले हिप्पी थे अभी हैप्पी है, हा? यही मेरा चमत्कार। पहले क्या थे? हिप्पी थे, सारा संसार उनके तरफ देख रहा था घृणा से, लेकिन आज सब लोग आदर से देखते हैं क्योंकि दे आर हैप्पी, बहुत खुश है, प्रसन्न है, ये मेरा चमत्कार है। तो ये चमत्कार अपने जीवन में भी हो सकता है, किस हद तक हम इस प्रेम संकीर्तन को स्वीकारते हैं, किस हद तक हम अपने अहंकार को बाजू में रखते हैं, क्योंकि जब तक हमें संग करना है भक्तों के साथ तो अहंकार को पीछे रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का हमें आदेश है, चैतन्य महाप्रभु हमें क्या बता रहे हैं, हमारा स्वरूप सिद्धि मंत्र दे रहे हैं। आपका मंत्र कौन सा है, आपका स्वरूप क्या है? दास दासानुदास, आपका एक ही स्वरूप है, दास दास अनुदास, भगवान के जो भक्त है उनके दासों का दास। स्वयं महाराज प्रतापरुद्र हो, हरिदास ठाकुर हो, कोलारी श्रीधर हो, जो जो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए उनकी एक ही इच्छा थी, मैं दासों का दास बनूं। तो हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस प्रकार के आंदोलन में हैं, जिसका प्रभाव ऐसा है जो महाराज अम्बरीश का प्रभाव था। महाराज अम्बरीश के साम्राज्य में कोई व्यक्ति स्वर्गलोक में भी जाना नहीं चाहता था, कोई व्यक्ति सिद्धियां नहीं चाहता था, केवल भगवान के जो सेवा है उसी में आनंद में ओतप्रोत रहने के कारण उनको इस संसार से कहीं पर भी नहीं जाना था। यही स्थिति आज हमारी है और हो सकती है, हम कितना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट है? यस सर। प्रभु जी का प्रश्न है कि भौतिक संसार में जैसे कंपटीशन होती है, कोई भी व्यक्ति मिलता है उससे हम कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, और कभी कभी भक्तों के बीच में भी ऐसे दिखाई देता है, तो क्या सही है? ऐसा उनका प्रश्न है, कैसे सही हो सकता है? भगवान के भक्तों के बीच में कौन सी कंपटीशन होती है? उनके बीच भी कंपटीशन होती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं दूसरों के कैसे सेवा करूं इसके लिए कंपटीशन होती है। ये नहीं कि दूसरे लोग मेरी कैसे सेवा करें, मैं कितना महान हूं, ये कोई अखाड़ा नहीं है। अरे उसने इतना अच्छा क्लास है, मैं भी देके दिखाऊंगा, ये कोई अखाड़ा नहीं है। हम लोग यहां कुश्ती के लिए नहीं आए हैं कि वो ऐसा कर रहे, मैं भी ऐसे करके दिखाऊ। नहीं, भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। जब दूसरे भक्त तरक्की कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए, चलो इसके पास ये शक्ति है, ये बहुत अच्छा प्रचार करता है, मुझे दिलो जान से उसकी सेवा करनी चाहिए ताकि और प्रचार करे। क्यों नहीं हम उसे सोच सकते? क्योंकि आप कितना भी बड़ा पद इस संसार में प्राप्त करो, कितना भी महत्व प्राप्त करो, आप बड़े राजा क्यों नहीं बन जाओ, लेकिन इस सब चीज की वैल्यू जीरो है। आज आप खुद को महान समझते होंगे तो रांची चले जाओ, जो हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, रांची चले जाओ, कोई नहीं पहचानेगा आपको, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। ऐसी चीज में बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, और भक्त बहुत बुद्धिमान होता है। जो जो भगवान ने अपनी शक्ति दी है उस शक्ति से सबकी मैं कैसे सेवा करूं, नो कॉम्पिटिशन, एक ही कॉम्पिटिशन, और मैं दूसरे भक्तों की कैसे अधिक सेवा कर सकता हूं। ये जो गुण है ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। ये नहीं कि दूसरों को ज्यादा कृपा मिल रही है तो मुझे जलन हो रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मैं तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हूं। बिल्कुल भगवान को आनंद नहीं देती इस बात को। जब वल्लभाचार्य आए थे उन्होंने प्रयास किया कि मैं कुछ बहुत अच्छा भागवतन के ऊपर टीका टिप्पणी किया है तो सबको सुनाने का प्रयास किया, और उन्होंने ये वाक्य कहा कि श्रीधर स्वामी की जो कमेंट्री है उससे मैंने अलग हटकर कुछ किया है। और महाप्रभु बहुत जबरदस्त उत्तर देते उसको, वो कहते जो स्वामी को नहीं मानता वो वेश्या है। देखो कितना जबरदस्त उत्तर दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों के सामने अलग अलग भक्तों की प्रशंसा करते थे, जैसे वो सनातन गोस्वामी के बारे में बोलने लगे, हरिदास ठाकुर के बोलने में बारे में बोलने लगे, तो सारे भक्त क्या कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल, उनको आनंद हो रहा है कि वो भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रभु चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। ये वैष्णवों का लक्षण है। क्या लक्षण है? कि जब दूसरे की प्रशंसा हो रही है, दूसरा अधिक तरक्की हो रहा है, उसकी तरक्की हो रही है, तो स्वयं को भी बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं, यस ही इज अ ग्रेट डिवोटी, आई शुड सर्व हिम, मैं उसकी सेवा करनी चाहिए। तो अगर हर व्यक्ति का ऐसे भाव होता है तो हम कहां रह रहे हैं? वैकुंठ में रह रहे हैं, गोलोक वृंदावन में। इस मीरा रोड में रहते हुए भी हम लोग कहां रह रहे हैं? गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं। ये गोलोक वृंदावन का भाव है। हर व्यक्ति गोलोक वृंदावन में बहुत बहुत सुंदर गाने वाले लोग हैं, लेकिन जब भ्रमर गाने लगता है तो सब लोग चुप, वो भ्रमर गा रहा है, उसको गाने दो। ये वहां का भाव है। सब लोग सोचते वो कितना सुंदर गा रहा है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है। तो ये भावना, यही वैकुंठ का वास है। इसमें कोई कंपटीशन की आवश्यकता नहीं है। भौतिक कंपटीशन हमें वैकुंठ से दूर रखेगी, गोलोक वृंदावन से, भगवान के प्रेम से, हरिनाम के शक्ति से। जबकि हरिनाम में पूरी शक्ति है हर चीज को निर्मल करने की, लेकिन जब तक हम इसे पकड़ के रखे हैं, इस कंपटीशन के भाव को, अहंकार को, तब तक हरिनाम हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। इसलिए इसको उसी प्रकार से त्यागना चाहिए। असल में इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने मेरे गुरु महाराज से एक बार पूछा था कि भाई सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो अहंकार चीज है ये बहुत तकलीफ देती है। हमारा जो प्राइड, तो उन्होंने दो उत्तर दिए मुझे, उन्होंने दो चीजें करो, एक ये कि बहुत सिंसियरिटी से भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसके कारण सिंसियरिटी के कारण आपका जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा का तो एक स्वाभाविक गुण है कि पहले से ही नम्र रहता है, उसको कोई अहंकार नहीं होता, ये स्वाभाविक है उसके लिए। लेकिन उस समय तक जब तक आप उतने शुद्ध नहीं हो तब तक पूरी ताकत है, जब जब आप उसको डिटेक्ट करते हो ये अहंकार आ रहा है, पूरी ताकत से उसको लात मारकर अपने जीवन से भगा दो। ये दो चीजें करो, तो एक है हमारी साधना बड़ा करनी चाहिए और हमारा प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन। बीच बीच में भक्त को देखते रहना चाहिए, मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं 6 महीने पहले कैसे सोचता था, जब मैं मंदिर में पहली बार आया तो कैसे सोचता था, हर भक्त कैसे मुझे शुद्ध दिखता था, आज क्यों नहीं दिख रहा है, सोचना चाहिए मैं ऐसा कौन सा बड़ा बन गया, खाली मैं तिलक लगाना जानता हूं, कंठी माला पहनता हूं, धोती पहनता हूं, क्या मैं बड़ा भक्त बन गया, कुछ 4 श्लोक को जानता हूं, नहीं। असल में जितने हम भक्त प्रगति करता है, जैसे कृष्णदास कविराज बोले स्वयं बोले मैं तो एक विष्ठा का कीड़ा हूं, ये उनको लग रहा है, ये गुण भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। और दूसरा जो गुण है कॉम्पिटिशन का, भगवान उसे मुंह मोड़ लेते हैं, सावध रहना चाहिए, ठीक है। यस क्या क्या ये परम स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब समझना चाहिए हमें, स्व अर्थ, लेकिन स्व कौन है, जब तक हमारा स्व शरीर है वो झूठा स्वार्थ है, वो गलत स्वार्थ है। लेकिन हमारा स्वार्थ अगर आत्मा के स्तर पर है कि मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है, दास दासानुदास, मैं दूसरे सारे प्राणी मात्रों का खासकर वैष्णवों का मैं दास हूं, इसलिए मैं इस वैष्णव की सेवा करना चाहता हूं, ये सही स्वार्थ है, परम स्वार्थ है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए, उसके पीछे लालायित लोलुप रहना चाहिए कि मैं कब भगवान के भक्तों की सेवा कर सकूं, हृदय से। यह दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं कि मैं सारे वैष्णवों की सेवा करता हूं, क्योंकि ये हर एक अलग अलग प्रकार के पहलू माया हमारे सामने रखेगी। माया हमें हमें नम्रता के बारे में अहंकार ला सकती है। देखो माया का प्रभाव ऐसा है, जो चीज हमें नम्र बनानी चाहिए कभी कभी ऐसा रखेगी मैं कितना नम्र हूं, ये भी एक अहंकार है। इसलिए भक्तों के संग में, भक्तों की सेवा में, भक्तों के गाइडेंस में इस प्रकार का अगर हमारा जीवन जाता है तो ये हमारा जो परम स्वार्थ है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की।